चूंकि हमारा अगला सेशन जो है वो रिस्क की कुंजियों का है, तो बहुत ही खूबसूरत दुआएं आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, रिस्क की दुआएं। इसको याद भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, मांगेंगे भी, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए उसको राजी कर दे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جی، رزق کے ناطے سے انشاءاللہ ہم لوگ کچھ دعائیں سیکھ لیتے ہیں. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Next one إن شاء الله. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما
جزاک اللہ خیر واسن الجزا. الحمدللہ، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ کچھ چیزیں ہم اپنی کوششوں سے حاصل کرتے ہیں جو ہم نے ٹپس لیں دیں، اور ابھی تک ماشاءاللہ رزق کی جو کنجیوں کی بات ہوئی، اور باقی ہم اللہ پر ڈال دیتے ہیں کہ مالک تو اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے، الحمدللہ. آج چونکہ فیملی کی بات ہوئی، رمضان کے بینیفیشل کرنے کی بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی قبول فرمائے اور ہم اس سب سے بہترین طور پہ فائدہ اٹھائیں. تو آئیے ہم نیکسٹ سیشن پہ چلتے ہیں، رزق کی کنجیاں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رزق کی کنجیاں، رزق مینجمنٹ. آج اس کا ڈے فور ہے. ابھی تک ہم تین دنوں میں جو پڑھ چکے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کے لیے ہماری کوششوں کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار کو بھی بنیاد بنایا ہے. ہم نے توبہ استغفار پہ بات کی، اسی طرح تقویٰ پہ بات کی. ہم نے وہ چیزیں سیکھیں کہ جن چیزوں کو کرنے کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے. کل کے سبق میں جو ٹاپکس کور ہوئے تھے، اور آپ چاہیں تو جنہوں نے نہیں سنا اور ابھی سن رہے ہیں تو وہ پیچھے سے ڈے ٹو کی ریکارڈنگ میں سے سن سکتے ہیں. تو ہم نے کل دیکھا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر اسی طرح شرعی علوم کے حصول کی خاطر خود کو وقف کر لینے والوں پر خرچ کرنا، کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا. آج ہم اللہ کی توفیق سے دسویں چابی کھولیں گے، 10th کی، اور وہ کیا ہے؟ آخرت کو اپنا متمع نظر بنانا. یہ متمع کیا ہوتا ہے؟ تمع، لالچ. جو شخص دنیا سے نظریں ذرا سی اوپر کر کے آخرت پہ اپنی نظریں ڈال لیتا ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. ہم جتنا اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، یہ دنیا اتنی ہم سے آگے بھاگتی ہے. لکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو شروع کروں تو شاید فائدہ ہو جائے. آپ دیکھیے، کبھی بچپن میں آپ نے تتلی پکڑی ہوگی. تتلی پکڑنے والے اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ وہ جتنا تتلی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، وہ اتنا آپ سے آگے بھاگتی ہے. اور بلاخر آپ ہانپتے کانپتے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے چھوڑو کون پکڑے. آپ بینچ پہ بیٹھے میں ابھی سانس لے رہے ہیں نا، وہی تتلی اڑتی ہوئی آ کر آپ کے کندھے پہ بیٹھے گی. یہ تتلی ہے دنیا. आप इसको पाने के लिए इसके पीछे जितना भागेंगे और दौड़ेंगे, ये उतना ज्यादा आपसे आगे जाएगी, ये उतना ज्यादा आपके लिए नाकाबले तस्खीर हो जाएगी। लेकिन जब आप इससे जरा सा आगे अपने आप को करते हैं और आप फिर इसको पाने की कोशिश की बजाय इससे बहुत बड़ी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, खुला उनब्बीकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर ना बताऊं? और वो आखरत है, तुम क्यों दुनिया में खोगे? ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात, उसको जहन में रख लीजिए। तो जितना ज्यादा आप इस दुनिया के गम में जिएंगे, ये दुनिया आपको गम देगी, और जितना आप आखरत के गम में जिएंगे, ये दुनिया आपके पास आएगी। तो नजरों को ऊंचा कीजिए, रब्बना आतिना फिर दुनिया ही ना कहिए, बल्कि रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना कहिए, और वफिल आखिरती हसनतन भी कहिए। तो आप, उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी कि आखरत को अपना मतमा, अपनी बुनियाद, अपनी सोच बना लेना ये क्या होता है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम हमेशा अपनी इसलाह करते रहें, और अल्लाह ताला ही के पास दुनिया भी है और आखरत भी, तो फिर क्यों ना उसी से मांगे। कुछ लोग सोचते हैं कि आखरत अल्लाह के पास है और दुनिया हमारे पास है, नऊज़ु बिल्लाह। आप और मैं सारी जिंदगी कोशिश करते रहें तो हम एक पानी का घूंट नहीं पी सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो रिस्क के असबाब में से एक सबब क्या है कि आखरत पे नजरें रखिए, आपकी जिंदगी आखिरा ओरिएंटेड हो, दुनिया ओरिएंटेड ना हो। और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास दलाइल मौजूद हैं, कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खूबसूरत तरीकों से सिखाया कि हम इस चीज पे रहें। दुनिया में रिस्क के असबाब में से एक क्या है कि बंदा आखरत को अपना मतमाए नजर बनाए और असली मकसूद बना ले, बस ला मकसूद इल्लल्लाह। तीन दलाइल इसके हमारे सामने हैं जो अल्लाह के नबी की अहादीस से मिलते हैं। पहली चीज तिर्मिजी में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से है कि नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसकी नजर आखरत पर हो तो अल्लाह ताला उसके दिल में तवंगुरी यानी दौलतमंदी डाल देते हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि उस बंदे को एहसास ही नहीं होता मेरे पास क्या है क्या नहीं है, और इसके बिखरे हुए मामला सुधार देते हैं, और दुनिया इसके पास जलील और हकीर होकर आती है। सोचिए जरा, कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी? आप किसी चीज को लेने की कोशिश में, लेकिन वो महंगी बहुत है, आप कहते हैं छोड़ो इन पैसों को मैं गरीबों में बांट दूं, आजकल राशन ले दूं, कुछ भी कर लूं, फिर क्या, मैंने इतना महंगा सूट क्या करना है, लेकर सस्ता सा ले लूंगी, और अभी जरूरत ही नहीं, बहुत सारे हैं पास। यकीन कीजिए, आपने वो पैसे दूसरों के साथ शेयर किए, आपको पता भी नहीं है, अल्लाह ने किसी और के दिल में डाल दिया, उसने वही जोड़ा खरीद के आपको ईद का गिफ्ट कर दिया, जब आप डब्बा खोलेंगे आपकी चीख निकल जाएगी कि अल्लाह मैंने तो नियत छोड़ दी थी, आपने मुझे दी, क्योंकि अल्लाह कहता है फिर मैं नहीं छोड़ता। माँ को पता लग जाए ना कि बच्चे को कुछ पसंद है, शौहर के दिल में आ जाए ना कि मेरी बेगम को फलां चीज पसंद है लेकिन ले नहीं रही क्योंकि महंगी है, तो वो उसको किसी ना किसी तरह से दिला ही देता है। ये सिर्फ इस बात की मिसाल है कि हम अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं। तो इस रिवायत को सुनने के बाद दुआ कीजिए कि दुनिया से ज्यादा नजरें आखिरत पे लग जाएं, और याद रखिए जहां ज्यादा रहना है वहीं चीजें लेनी चाहिए ना। आप किसी घर से मूव होने वाले हो तो हम उधर तो सोफे नहीं लेंगे ना, आप कहते हैं नए ही घर में लूंगी, बस यही कीजिए। हजरत अबू जर गफारी बहुत ही वरा और तकवा वाले सहाबी थे, कोई उनके घर में आया और देखा तो सामान ही नहीं है, कहा आपके घर में सामान नहीं है, कहने लगे दूसरे घर में भेज दिया। वो समझे कि उनके भी हमारी तरह कोई दो दो तीन तीन घर होंगे जो अमूमन आज हम मुसलमानों का हाल है, कहा अच्छा कुछ इधर भी रख लेते, कहा यहाँ का मालिक मुझे इधर रहने नहीं देता। फिर उनको समझ आई कि ये आखरत को अपना मतमय नजर बना चुके हैं, अल्लाह हमें भी इतना गिना दे दे, इन्हीं लकड़ियों और बेकार चीजों को पूछते हुए दुनिया से ना जाए। एक जुमला लिखिए जो आज का जेम बन सकता है, दुनिया की ये चीजें आपकी मेरी खिदमत के लिए हैं, हम इनकी खिदमत के लिए नहीं है। आप में से कोई है जो अपनी खादिमा की ही खिदमत करती रहे और वो काम भी ना करे? नहीं, तो ये आपकी खिदमत करेंगी, ये कपड़े, ये घर, जूते आपकी खिदमत के लिए हैं, और अगर आप इन्हीं की खिदमत करते चले गए तो फिर आपने कुछ ज्यादा नफे का सौदा नहीं किया। तो जरूरत है इस बात की कि इंसान अपने दिल को गनी रखे। ये जो लफ्ज गिना है ना, ये बहुत प्यारा लफ्ज है, बस लोगों के बैंक में लाखों होते हैं, करोड़ों भी होंगे, हौलते ही रहते हैं, हाई इकोनॉमी डूब गई, डॉलर चला गया, ये हो गया, तो उनके दिल में तवंगुरी नहीं, फकर है। और कुछ के पास 100 200 भी हो, कहते हैं काफी है, गुजारा हो जाएगा, जरूरत पड़ी तो फिर उसके बाद देखेंगे। तो जो अल्लाह के नबी ने कहा, मन का नतिल आखिरत हम्महू जाल अल्लाहु गिनाहु फी कल्बी, तो दुआ कीजिए हमारा हम आखिरत बन जाए और दिल में गिना आ जाए। व जमा लहू शम लहू, और अल्लाह उसके मामलात को समेट देता है। वातत हो दुनिया वही रागिमतुन, और उसके बाद दुनिया इस तरह आती है जैसे वो नाक रगड़ती हुई आती है। अल्लाह आपके मेरे लिए ये चीजें आसान कर दे। एक और रिवायत है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, उसमें आपको एक और खूबसूरत रिवायत मिलेगी नबी सल्लम की। इमाम बज़ार ये रिवायत लेके आते हैं, जिस शख्स की आखरत की नीयत हो तो अल्लाह तबारक ताला इसके दिल में तवंगुरी यानी दौलतमंद होने का एहसास डाल देते हैं, इसके बिखरे हुए कामों की शिराजा बंदी फरमा देते हैं, इसकी दोनों आंखों के दरमियान, मुराद क्या है, पेशानी, फोरहेड, नासिया, इसकी दोनों आंखों के दरमियान से मुफलसी को खींच लेते हैं, और दुनिया इसके पास जलीलो ख्वार होकर आती है। यानी एक वो है जो दुनिया के पीछे जलील हो रहा है, और ये वो है जिसके पीछे दुनिया हकीर होकर आ रही है। बस वो सुबह करता है तो तवंगुरी में, और शाम करता है तो तवंगुरी में। मैं इसको आसान जुमले में बोल दूं, वो सुबह उठता है तो उसको कोई फिक्र नहीं होती कि मेरे पास है भी कुछ नहीं, कुछ लोगों की जेब में 1 रुपया नहीं होता, लेकिन गनी वो कहते जरूरत ही कोई नहीं, कार्ड है ना, जरूरत नहीं, कार्ड की भी जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, पैदल चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और शाम को भी उनको कोई गम नहीं है। तो दिल से लिखिए कि अल्लाह हमारे दिलों से गरीब हो जाने का खौफ निकाल दे और हमारे बिखरे हुए कामों को समेट दे। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, उलझे हुए, काम है, कमा रहे हैं और गुस्सा चढ़ा हुआ है, और बच्चों पे, बीवी पे नाराज, क्यों मैं गुस्से में रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर अपनी हिम्मत से ज्यादा बोझ डालता हूँ। तो उतना वक्त दीजिए कमाने को कि जिसके पास आप इंजॉय भी तो कर सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंजॉय नहीं करते अपनी चीजों को और सिर्फ कमाने की धुन होती है, अल्लाह ताला उस धुन से निकाल दे। फिर इसके बाद आप देखिए कि जब आप आखिरत पे नजरें लगा लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारे आसानियों के मामले कर देते हैं। एक और रिवायत है, इब्ने माजा की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद से हम तक पहुंची, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सारे अजाइम छोड़कर एक अजम बना लिया, हाईलाइट करें इसको जरा, जिंदगी का गोल, पर्पस ऑफ लाइफ, मकसद हयात, सारे अजम छोड़कर एक अजम बना लिया। हदीस सुन ले फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ, यानी सारे अजाइम छोड़कर एक अजम बना लिया तो अल्लाह ताला इसे दुनिया के गम से किफायत कर देते हैं, टेंशन फ्री, रिलैक्स्ड, और जिसके अजाइम दुनियावी मामलात में मुंतशिर रहे तो अल्लाह ताला को कुछ परवाह नहीं कि वो इनकी किस वादी में हलाक हो गया। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह करे कि मैं आपको ये बात समझा पाऊँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस हदीस को समझाना, क्योंकि आज हमारे अज़म वो नहीं रहे जिसका इधर जिक्र है। ये कौन सा अज़म है, ये कौन सा मकसद हयात है, ये जिंदगी का किबला और काबा क्या है, जिसको शायर ने शायद किसी दौर में कहा था कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी। और जिनको उर्दू समझ नहीं आती ज्यादा, तो उनके लिए इसको भी खोल दूं कि जिस शख्स ने जिंदगी का मकसद अल्लाह का दीन बना लिया, उसका गलबा, गलबा इस्लाम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल खुदा व दीनिल हक की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, एक जगह ते वलो करिहल काफिरून, एक जगह ते वलो करिहल मुशरिकून, 3 जगह कुरान में ये आयत है कमोबेश। तो क्या पता चला कि आखरत और अपनी माद, दोबारा उठने को अपनी नियत और हदफ बनाना, ये इतनी बड़ी नेकी है कि जिंदगी का मकसद ही बदल जाता है। आप पूछिए खुद से, लिखिए मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। आप राह चलते 10 लोगों से पूछिए, किसी जवान से पूछ लें, किसी बूढ़े से पूछ लें, एक औरत से पूछ लें, एक और मर्द से पूछ लें, साथ बैठने वालों से पूछ लीजिए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। मर्द कहेगा कमाना, औरत कहेगी बच्चे पालना, और इसी तरह पढ़ने वाला कहेगा स्टडीज, लेकिन हकीकत ये है, बहुत कम लोग जानते हैं कि जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह के दीन को अपना बेबी बना लें। तो आज से इस दीन को अपना बेबी बना लें। तीन बच्चे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, चौथा बच्चा इस दीन को बना लीजिए। चार हैं तो इसको पांच वाले, यानी गोद ले लीजिए दीन को। लिखिए ये जेम, अल्लाह के दीन को गोद ले लीजिए। हम गम कब कहाँ किसको बताना है, अल्लाह का दीन कैसे फैले, कैसे लोग अल्लाह से जुड़े, कैसे लोग सुन्नतों को समझें, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जुड़े, कैसे माशरे के अंधेरे दूर करने हैं, कैसे इस्लाम को लाना है। अपने इस 5-6 फुट के वदन से शुरू कीजिए, दुनिया में जिस कोने में अल्लाह आपके जरिए इस खैर को पहुँचा दे। और आज तो आप देखिए कि एक क्लिक पे दुनिया में कहाँ बात जाती है, इतनी मुख्तलिफ जगहों से लोग ये पैगाम सुनते हैं। कभी मैं उन नामों को पढ़ूं तो मैंने कभी सुने भी नहीं होते। मैं कहती हूँ उधर उर्दू बोलने वाला है, कहते हैं जी हैं। और अल्लाह ने जिस तरह बात फैलानी होती वो फैलाता है, क्योंकि वमा रमईत इज़ रमईत वलाकिन अल्लाह रमा। तो आप सच्ची नीयत से पूरी दर्दमंदी के साथ, मोहब्बत के जज्बे लेते हुए, जिम्मेदारी के एहसास के साथ इस दीन को लेके चलते जाइए, बाकी काम अल्लाह पे डाल दीजिए। देखिए अल्लाह कहाँ से फिर आपकी मदद करता है। और इसके बरक्स क्या है, जरा हदीस का आखिरी हिस्सा तो देखिए कि जिसने दुनिया का गम रखा बस उसको हर वक्त गम ही गम। आज मुसलमान परेशान क्यों है, मुसलमान और परेशानी इम्पॉसिबल, ये दो ऑपोजिट्स हैं। मुसलमान और स्ट्रेस नामुमकिन, मुसलमान डिप्रेशन में चला जाए नामुमकिन। और आज तो मुसलमानों के बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं वेस्ट में, इतना प्रेशर है उन बच्चों पे, इन प्यारों पे। अल्लाह हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की तौफीक दे। हमने इन हदीस से क्या दो बातें सीखी, पहली बात है कि आखरत को मतमई नजर बनाने से क्या मुराद है, यानी आखरत और माद, माद कहते हैं दोबारा उठना, आदा यऊदु से, इसको अपनी नीयत हदफ और निशाना बनाने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी मईशत की खातिर कोशिश ना करे, मर्द कमाने ही ना निकले, क्या करना है आखरत में, मरी जाना है, नऊजु बिल्ला, ये मतलब नहीं है। तवक्कुल को जहन में ले आइए। परिंदे घरों से निकलते हैं तभी चोंच में दाना आता है, तो कोशिश नहीं छोड़नी, बल्कि दायरे शरीयत में रहते हुए खूब जिद्दोजहद कीजिए। लेकिन इसका असल मकसूद, असली निशाना और हदफ, हदफ है गोल, टारगेट, आखिरत का बनाना और उसको सुधारना हो। दुनिया बनाने, संवारने और सुधारने के चक्कर में आखिरत को दांव पे ना लगाइए, ये जम है। दुनिया लीजिए लेकिन आखिरत की कीमत पे नहीं। दो जुमले लिखिए, शऊर के साथ बोलूंगी, जो आज हमारा कल्चर प्रेजेंट करता है, दुनिया लीजिए लेकिन सिर्फ दुनिया ना लीजिए। यह है इस्लाम का मुतालबा आपसे, दुनिया की फिक्र कीजिए लेकिन सिर्फ दुनिया की फिक्र ना कीजिए। और दूसरी बात लिख लीजिए, आखरत बेच के दुनिया ना खरीदें। ना समझ खवातीन होती है ना, जरा सी कोई ख्वाहिश मर्द ने पूरी नहीं की, वो नहीं कर सकते बेचारे, फौरन वो अंदर से निकालेंगी सोने की अंगूठी, जाकर बेचेंगी और उन पैसों से कोई एक जोड़ा ले आएंगी, और कुछ नहीं तो कुछ और ही बेकार चीज। ना समझी है, 1 तोला सोना बेचकर कोई जाकर 10 तोले आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद ले, बेकार है, कल नहीं मिलेगा उसका कुछ भी। तो खुद से पूछिए, क्या सिर्फ दुनिया तो नहीं पा रही और क्या आखिरत की कीमत पे तो नहीं पा रही। चलिए अल्लाह ताला हमारा दिल खोल, आखिरत को मतमय नजर ठहराने से क्या मिलेगा, क्या फवायद है। नंबर एक, अल्लाह दिल में तवंगुरी डालता है। लफ्ज चूंकि हमारे कल्चर में आम नहीं है तो तवंगुरी बस ये लिख लें कि गरीब होने का डर नहीं होता उस बंदे को, जेब में कुछ है तो भी खुश, नहीं है तो नहीं, 100 थे तब भी खुश था, 1000 हो गए तो भी ठीक, और 1 लाख हो गए तो उसकी राल नहीं टपक रही कि अब इसको और ही कर लूं, यानी 9 और 99 का चक्कर नहीं है उस बंदे के पास। जेबें खाली झाड़ के कल अल्लाह को दिखा देगा, अल्लाह तेरी दुनिया से ऐसे आया हूं। दूसरा उसका फायदा जो बहुत ही प्यारा है, बिखरे हुए मामलात सिमटने लगते हैं। क्या आज आपको हर बंदा डिस्टर्ब नहीं लगता, समझ नहीं आती क्या करूं, चीजें भी नहीं मिलती क्योंकि घर में है ही बहुत। पहली भी फोकस्ड बंदा ही दुनिया में कोई काम कर सकता है। मैं इस वक्त पढ़ाती हूं, आपको क्या लगता है मैं फोकस्ड हूं, मेरी बातें आपको बिखरी हुई उलझी हुई इधर से उधर, बीच में इधर कर दूं ये भी कर दूं, नहीं मैं पढ़ा सकूंगी आपको, जब तक मेरे दिल पे ये बातें नहीं उतरेंगी मैं आपके दिल में नहीं उतरवा सकती। तो हमेशा अपने आप को समेटिए, और अब तो हमारी समेटने की उम्र शुरू हो चुकी है। आप कहीं जाते हैं 15 दिन रहने, दो बैग्स में सामान ले जाते हैं, फिर आप उसको इस्तेमाल की जगहों पे चीजें रखते हैं, जाने से 1 दिन पहले क्या करते हैं आप, चीजें समेटनी शुरू करते हैं। लिखिए, जिसकी उम्र 30 سال سے اوپر شروع ہو گئی. 30 to 40s کے بٹوین لوگ اب سمیٹنا شروع کرتے ہیں. کسی وقت بھی آ جائے گا یہ بلاوا تو کچھ ادھر رہنا جائے. مجھے تو لگتا ہے ہمارا سارا کچھ ادھر رہ جانا ہے. بہت ہی ڈسٹرب خاتون جو بہت ڈس آرگنائزڈ ہیں. کہیں سے ہو کے جائے گی نا 10 چیزیں وہاں چھوڑ جائے گی. وہ بچے کا فیڈر رہ گیا ماما بھیج دینا, وہ اس کے جوتے کا ایک پاؤں چلا گیا. کیا میں نے آپ نے اپنے اتنے کھلارے تو نہیں ڈالے ہوئے اس دنیا میں؟ لکھیے یہ بھی جم. کیا میں نے اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کر دیا؟ پیچھے دنیا میں رہ جائے گی میری کوٹھی, میری گاڑی بھی دنیا میں رہ جانی ہے, یہ سیل فون. اللہ میں نے ان کو کیوں نہیں اچھے کاموں میں لگایا کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ جائے؟ اور یاد رکھیے جن چیزوں کو صرف دنیا اور دنیاوی چیزوں اور نافرمانیوں میں لگا رہے ہیں سب ادھر رہ جائیں گی. اگلا فائدہ دیکھیے, دنیا کا ذلیل اور حقیر ہو کر ایسے شخص کے پاس آنا, اللہ تعالیٰ کا اس کی پیشانی سے فقر کو دور کرنا. اور یہ جو پیشانی ہے نا, یعنی اس کے پیچھے دماغ ہوتا ہے. مشکل بات ہے, اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں ان احادیث کی. میں تو کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو بہت ہی سمپل سا کر کے بتاؤں, ورنہ ایک ایک لفظ پہ بہت باتیں ہیں. صرف یہ سمجھیے کہ اس کے دماغ میں فقر گھس جاتا ہے. ہائے مر گئے, ہائے نقصان ہو گیا, کروڑوں ڈوب گئے. ہائے آپ ذرا کروڑ پتی تاجران کو دیکھا کریں, گورنمنٹ کی ایک پالیسی بدلے یہ بستر پہ آ جاتے ہیں. ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے, اس کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکن بدلتی ہے, اکانومی گئی اوپر گئی. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں راتوں رات ہاسپٹلائز ہو گئے کیونکہ ڈالر کا ریٹ اوپر سے نیچے چلا گیا. وہ ایسے رات کو قیام میں نہیں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, قوم للہ قانتین. وہ کمپیوٹر کھول کر نیو یارک کی ویب سائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج ریٹ کدھر گئے, شیئرس کدھر گئے, شیئر ادھر گئے. یہ ہے مسئلہ. اگر آپ کو بھی ہر وقت ڈوبنے اور گھبرانے کا فکر ہے نا, تو بس پھر اللہ سے دعا کیجیے اصلاح ہو. اگلا فائدہ کیا ہے کہ ایسا شخص رات کو بھی آرام کی نیند سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو اس وقت بھی اس کو کوئی غم نہیں ہوتا کہ میرے پاس آج کے لیے کھانا نہیں پینا نہیں, اور شام کا بھی یہی حال ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا ذریعہ معاش چاہے صنعت ہو, تجارت ہو, ملازمت ہو, زراعت ہو, یہی کام کرتے ہیں نا اکثر برادرز. کوئی تاجر ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے, اس غرض سے جو کچھ بھی ہو وہ اس کو کفایت کرے گا. اللہ ہمیں اس کی فکر لگا دے. اب اس کا اپوزٹ سوچئے خود سے ایک سوال. نیکسٹ سلائڈ پہ چلیے. دنیا کی فکر لگاتے ہیں تو کیا انجام ہوگا؟ یعنی آخرت کی فکر لگانے کے فائدے تو پڑھ لیے, اب دنیا کی فکر کا انجام کیا ہے؟ تو پہلی بات تو دنیا میں آج ضرب المثل اور سمبل ہے, جو کوئی دولت میں جانے والا تو وہ قارون ہے. سورت قصص کھول لیجیے, آپ کو اس شخص سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتا دیا. تو کیا پتہ چلا, ایسا شخص پریشان ہوتا ہے اور ایسے شخص کو کچھ نہیں ملتا. دوسری بات نوٹ کیجیے گا, اور وہ کیا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی قارون بھی خالی ہاتھ گیا, اور وہ اپنے معروف جملہ نہیں سنا ہوا کہ دنیا سے جانے والا وہ شخص جس کو دنیا کا فاتح کہتے ہیں, اسکندر اعظم کیا کہہ گیا تھا کہ کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. سوچئے ذرا, ہم بھی خالی ہاتھ جائیں گے. پھر اگلی بات ہے کہ دنیا پرستی کے مرض کا زمانے قدیم سے انسانوں کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرنا. یعنی ماضی میں بھی جھانک کے دیکھیے, ہسٹری سپیکس, تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ جب دنیا کے پجاری ہو جاتے ہیں نا تو نافرمانیوں میں پڑتے ہیں. ظاہری بات ہے پوری نہیں پڑ رہی تو پھر کچھ نافرمانیاں تو کرنی پڑیں گی نا. اور اگلا نقصان کیا کہ آخرت میں محرومی ہوگی. کیا بنے گا اس شخص کا جو ایک مہینہ کہیں رہنے کے لیے آئے اور ضرورت کی ایک چیز ساتھ نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے کبھی آپ ایسا سفر کریں اور اچانک جائیں اور کچھ ہو. اور آپ دیکھیے دنیا میں تو ہر چیز ملتی ہے, آپ 10 چیزیں چھوڑے 12 مل جائیں گی آپ کو اگلے دن جا کر. جیب میں پیسے ہیں جائیے اور ایک ایک چیز بلکہ نہیں لے کے آئیں گے. آخرت میں کیا ہوگا؟ لکھیے ایک جملہ جیم. آخرت میں کچھ آرڈر نہیں ہو سکتا, ڈیلیور میں ہوگا. اس دنیا میں آرڈر کیجئے, پوسٹ پیمنٹس کیجئے, یہاں سے آپ دیں گے, کنسائنمنٹس آپ کو آخرت میں ملیں گے. تو اگر دنیا میں آرڈر ہی نہیں کیے, یہ زاد الخیر کیا, یہ نیکیوں کو ऑर्डर करने का मौका है, तो फिर वहां जाकर तो लोग कहेंगे वापस जाइए। कभी आप किसी फ्रेंचाइज से फूड लेने लगे, मतलब मैकडोनल्ड, एक दफा अगर आप उनकी लाइन से आगे आगे ऑर्डर थोड़ा किया, थोड़ा नहीं, कैश पे आगे आप कहते हैं कुछ और भी दे दो, कहते हैं नहीं आपको वापस यू टर्न लगाइए, पीछे जाके ऑर्डर दीजिए, तो फिर आखिरत में तो महरूम होंगे। और अगली बात यह कि इंसान शैतानी तरगीबात की खत्म ना होने वाली यलगार का शिकार होता है। हर ख्वाहिश के बाद एक नई ख्वाहिश आती है, वो विशेष सर्कल में घूमता है, अहातत बिही खतीयतुहु, सूरत बकरा में आता है। तो फिर इंसान दुनिया की हल मिम मजीद, कुछ और भी है तो ले आओ। और अगली स्लाइड में देख लीजिए, इसी को अल्लाह ने सूरत तकासुर में कहा, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून। तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहां तक इसी फिक्र में तुम लबे गौर तक पहुंच जाते हो, यानी कब्र के दरवाजे पे पहुंच जाते हो। हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? ये मालूम हो जाएगा कि सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं और आगे कुछ नहीं लाए। अल्लाह ना करे हम में से किसी के साथ आखरत की ट्रेन से निकलने के बाद ये हाल हो कि हमारा सारा लगेज ही खो गया, लॉस्ट लगेज, और दुनिया में अमल करना और रियाकारियों से और गिफ्तों से जाया कर देना, यही मिसालें हैं। नेकियां भी करना और गुनाह ना छोड़ना भी यही मिसाल है। आज मुसलमानों को शैतान क्या धोखा देता है, कोई बात नहीं गुनाह है ना, कुछ नेकियां भी तो करती है ना। बस आप किसी बच्ची से कहें ना कि ये बेटा ये अच्छी बात नहीं है, अब क्या पहन के बाहर जा रही है, और ये दोस्तियां और ये तो इस्लाम नहीं पसंद करता। कहती क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी दादी की खिदमत नहीं करती, और वो मैं नानी अम्मा को प्यार से नहीं देखती, और वो क्या हुआ, मैं नमाज तो पढ़ी है ना। यानी आज हम मुसलमान इस धोखे का शिकार हो गए, अल्लाह माशाल्लाह के नेकियां कर रहे हैं ना, तो अल्लाह पे है एक हमारा रोब, जरा किसी बात पे अल्लाह ताला पकड़ेगा हम तो फौरन शुरू हो जाएंगे कि अल्लाह ताला नहीं जी हमने कुछ नेकियां भी की हुई हैं। ऐसा नहीं है, याद रखिए बहुत सारी नेकियों का ढेर भी है तो उसको आग लग जाएगी अगर कोई हराम चीज निकल आई। आप लगेज लेकर जाते हैं और उसमें कोई एक चीज खराबी की निकल आए, प्रोहिबिटेड आइटम हो, पकड़ लेंगे आपका सारा सामान। इजाजत नहीं करेंसी की इससे ज्यादा ले जाने की, आप लेके तो जाइए ज्यादा, देखिए क्या होता है आपके साथ। तो दुनिया में तो हमें ये सारे कानून समझ आते हैं, वहां क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि अभी आई नहीं है वो आखिरत सामने, उसको भी हमने समझा ही नहीं है। मैं सच बताऊं, हमारी कैफियत उस बच्चे की सी है जिसने अभी तक इस दुनिया की हकीकत समझी नहीं, बल्कि एक जुमला लिख लीजिए जैम बन जाएगा, असली और नकली नोट का फर्क ही नहीं पता आपको मुझे। एक ना समझ बच्चा माँ से 10 रुपए लेता है और बाहर ठेले वाले से 100 नकली नोट ले आता है, और माँ देखकर कहती है देखो कितना बेवकूफ है, असली नोट छोड़ के नकली दे रहा है। ऐसा हुआ तो मैं मुस्कुरा दी, मैंने कहा देखा जाए तो ये बच्चा ही नहीं, हम भी ऐसा ही सौदा कर रहे हैं, हमारी भी जिंदगी ऐसी गुजर रही है। असली नकली का फर्क समझना, ये है आज वक्त की जरूरत, इसकी कोशिश कीजिए और इसकी फिक्र कीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके दिल को गिना से भर देगा, अल्लाह ताला आपको जरूर इन चीजों से बेनियाज कर देगा जिन चीजों के गम में दुनिया फंसी हुई है।